राम यह प्रवचन परम सरदेव स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम कोई बात नहीं सर।
महाराज जी कल जागृति की बात चली थी, आपने कहा स्वतः जागृति होनी चाहिए, तो ऐसे क्या है कि जैसे मैं अविवाहित, मतलब मैं अविवाहित नहीं हूँ ये जोड़ नहीं लगाना पड़ता और स्वतः ही रहता है कि मैं विवाहित हूँ, नींद में उठे तो ही पूछे कि विवाहित हूँ, ऐसे ही क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ ये स्वतः जागृति है ना, कैसे है इसका कोई उपाय क्या है स्वतः?
अच्छा जैसे आप देखते हो कि मैं सिंथल में हूँ, इस वास्ते क्या उपाय किया आपने?
स्वतः
क्यों बीकानेर में? बीकानेर जैसी हम धोरे पर रहते, हमने तो अभी बात कही कि बाहर जाना है तो मेरे को धोरे याद आता, अगर पंडाल है तो बाहर बैठेंगे। अभी आप सुना बात ये, तो वो उपाय क्या किया आपने? और मानो मैं मशीन सर हूँ, क्या उपाय किया आपने?
उपाय करते हुए भी याद रहती है,
तो मान लिया, ये मानना चाहिए, उपाय कैसे नहीं किया, माना है आपने, स्वीकृति कर दी। स्वीकृति अस्वीकृति बहुत बड़े विशेष काम करती है, स्वीकार कर लेना अस्वीकार करना। शरीर मैं नहीं हूँ ये अस्वीकार कर लिया शरीर का, वो स्वरूप है वो स्वीकार कर लो, तो इसमें पारमार्थिक चीज की स्वीकृति इतनी बढ़िया उन्नति नहीं देती है जितनी संसार की अस्वीकृति लाभ देती है। मैं ब्रह्म हूँ ये स्वीकृति इतना लाभ नहीं देगी। मैं शरीर नहीं हूँ, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ये बहुत काम देगी, ज्यादा है। इन दोनों में अपेक्षा कर दिया जाए तो मैं शरीर नहीं हूँ ये बहुत ज्यादा लाभ की बात है। तो अस्वीकृति कर दो ना, तो फिर वो मैं शरीर नहीं हूँ ये हो जाएगा। अस्वीकृति तो करते नहीं, स्वीकृति करते हैं उससे जल्दी सिद्धि नहीं होती।
मतलब अस्वीकृति करते हैं तो थोड़ी देर तक तो ऐसा रहता है,
थोड़ी देर स्वीकृति काम करे, स्वीकृति थोड़ी देर नहीं रहती है, वो तो सदा की नहीं हो जाती। ब्याह हो गया, अब स्वीकृति कर ली एक बार, अब कपास करनी नहीं पड़ती, पास है, भूल जाते हैं, ब्याह हो गया भूल जाते हैं यार, बस याद करो भाई ब्याह कर लिया, याद करो, याद करते हो, स्वीकृति कर दी कैसे भूलेगी? याद करो तो भूल जाएगा। याद करना और स्वीकृति करना में फर्क है, जैसे चिंतन करना और जागृति रहने में फर्क है। स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति और लब्धा ये दोनों पद मौजूद को सिद्ध करता है, स्मृति है जो मौजूद को सिद्ध नहीं करता है, नए को सिद्ध करता है। ख्याल में आया नहीं? नष्ट मोह स्मृति लब्धा, लब्धा पद है ना ये, एक तो लब्धा एक स्मृति, एक चीज हमारे को मिल गई और एक चीज लादगी, लादगी मिलने में फर्क है। मैं तो कहता हूँ हिंदी में हमारे लादगी पद है ये मारवाड़ी में है और पंजाबी में लब्धी, लादी और लभी, लादी जोधपुर भाषा है, लभी बीकानेर की भाषा है और लब्धी पंजाबी भाषा है। संस्कृत में शब्द नहीं है इसका बढ़िया, ऐसा लब्धा है संस्कृत में, हिंदी में, संस्कृत में है, हिंदी में ऐसा शब्द नहीं है बढ़िया। पा गई मिल गई तो ये नई में भी होता है पुरानी में भी होता है,
दोनों में घटे शब्द, दोनों में शब्द घट जाए।
हाँ एक में घटे, ऐसे एक में घटना कोई हिंदी का शब्द बताओ आप, कोई हिंदी में शब्द नहीं है ऐसा, बताओ फिर अपने वो कहने लग जाएंगे, क्या है सीख लेंगे हम तो। हमारा बहुत लाभ होता है। आप बताओ, इससे हम सीखते हैं। तो ऐसे स्वीकृति है वो, और याद करना है, फर्क है। ये याद करने का भूल जाएगा, स्मृति स्मृति भूलेगा नहीं, स्वीकृति भूलेगी नहीं। स्मृति और लब्धा हुआ जैसे स्मृति है, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, स्मृति नाम अनुभव से विषयाव संप्रमोष स्मृति, स्मृति का लक्षण किया है अनुभूत विषय का असंप्रमोष, न भूलना, उसका नाम स्मृति है। याद आ गई तो याद आ गई, एक याद कर लो तो करते में कर्तृत्व अभिमान होता है, और याद आ गई उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है, आपसे आप होता है वो। याद आ गई, याद करो जिसमें क्रिया है, और याद आई जिसमें क्रिया नहीं है, वो जागृति है। ये जागृति में स्मरण करने में याद करने में ये फर्क है। तो जागृति रहनी चाहिए एकदम, जागृति में दोनों बात है, मैं ब्रह्म हूँ ये एक, और मैं शरीर नहीं हूँ, इन दोनों में मैं शरीर नहीं हूँ ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। हम ब्रह्मास्मि की अपेक्षा शरीर नहीं हूँ ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। कहो क्यों? एक ही बात है, शरीर नहीं हूँ तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ तो ब्रह्म हूँ तो शरीर नहीं हूँ, एक में दोनों सिद्ध होते हैं। फिर कम ज्यादा क्यों है? कम ज्यादा इस वास्ते है कि इसमें अहंकार मुख्य है, तो मैं ब्रह्म हूँ इसमें ब्रह्म की भावना तो करता है, साथ में अहम रहता है, अहम है प्रकृति का कार्य, महाभूतान अहंकार बुद्धि भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अपरा अपरा प्रकृति का अंश है अहम, वो अहम को साथ में अपरा प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। और मैं शरीर नहीं हूँ निषेध करोगे तो निषेध करने में अहंकार सब निषेध, प्रकृति प्रकृति का कार्य सबका निषेध होगा, तो शेष में तत्व ही रहेगा और रहेगा क्या? निषेध करो क्या रहेगा और बताओ कौन सुन का?
ये मैं ब्रह्म हूँ ये तो उपलक्षण, ब्रह्म उपलक्ष्य होते उपलक्षण छूट जाएगा।
मैं ब्रह्म हूँ होने पर भी साथ में मैं रहता है ना,
तो उपलक्षण उपलक्ष्य को सिद्ध होते ही उपलक्षण छूट जाएगा।
देखो अनाधिकार से किसी जूनी में गया वहां अहंकार रहा है, कुत्ते के भी से अहंकार होता है, अहंकार सब जगह रहा है। तो अहंकार का जड़ के साथ संबंध है, कि जड़ जिस धातु का है उसी धातु का अहंकार है, जिस धातु का अहंकार है उसी के शरीर धातु का है, नहीं हूं ये साथ नहीं है हमारे। अब बताओ ध्यान दो थोड़ा, पुराना जो हरदम साथ में है वो बिना सोचे समझे याद रहेगा, बिना सोचे समझे। वाच्यार्थ जितना जल्दी समझ में आता है उतना लक्ष्यार्थ समझ में नहीं आता, लक्ष्यार्थ सीख लेते हैं और वाच्यार्थ समझ में आता है। जीव ब्रह्म की एकता लक्ष्यार्थ समझ बातों में आता है, वाच्यार्थ संसार शरीर एक है वाच्यार्थ है ये समझ में आता है। शरीर पाव गगन समीरा पंच रचती यादव शरीरा बिल्कुल समझ में आती बात।
स्थूल पड़े
हाँ, तो स्थूल है इस उद्देश्य सूक्ष्म वो आप साफ हो जाएगा, स्वतः स्वतः होगा। क्रिया जिसमें साथ नहीं है वो सिद्ध हो जाएगा, क्रिया जिसके साथ में नहीं, क्रिया और पदार्थ प्रकृति और प्रकृति क्या है, जड़ क्या है, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ जितने भी है और क्रिया है ये प्रकृति है, इसको साथ में पकड़ोगे तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, होगा तो बहुत देरी से होगा, विशेष बुद्धि और तेजी का वैराग्य हो, दोनों बात विशेष होगी तो उस समय सिद्धि हो जाएगी। पर तेजी का तो वैराग्य चाहिए और बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए, ये दो चीज होगी तो उससे सिद्ध हो जाएगी। वैराग्य कमजोर होगा तो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी तो वह सिद्ध नहीं होगी जल्दी, और इसमें बुद्धि मामूली हो बोले सिद्ध हो जाएगा आपसे आप ही,
थोड़े
वैराग में हो जाएगा। त्याग हुआ ना, त्याग है वो अनंत होता है, ग्रहण होता है वो सीमित होता है। हर एक विषय में देख लो, लाखों करोड़ों अरबों रुपये भी ग्रहण है तो अरबों सीधी है, त्याग की सीमा नहीं है, त्याग कर दिया, त्याग खत्म हो गया, त्याग असीम होता है, ग्रहण सीमित होता है। सोचो आप, स्वयं विचार करो। मैं कहता हूं वैसे मान लो, ये नहीं है। मान लेने से एक बात है, ठीक है, परंतु बढ़िया चीज होगी ये, जब अपना खूंटा रोपोते हैं ना जमीन में, खूंटा गाड़ते हैं ना, तो गाड़ कर बालू ऊपर रख फैलाते हैं, उसको हिलाने से मजबूत हो जाता है। तो हिलाओ आप, इसको हिलाओ दोनों को, एक स्मृति है, एक जागृति। प्रश्न जागृति का है, तो जागृति कब होती है कि जब वो स्वीकार कर रहे, स्वीकृति अस्वीकृति, ये बहुत दावी चीज है। इतना याद करना लगाना ऐसा नहीं है। स्मृति और लब्धा, ये दो शब्द आए, अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा, ऐसा कहा है। ज्ञान हो गया ये नहीं कहा है, मोह नष्ट हो गया ये कहा है। नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, तो मोह नष्ट होने पर ज्ञान रहेगा और क्या रहेगा, स्मृति लब्धा, अब क्या रहेगा बाकी, इस लादगी, स्मृति लादगी, लादगी जो पुरानी चीज ही वो लादी है, लादी नई चीज नहीं होती, लादी चीज वो होती है जो खोई हुई थी, मौजूद थी वो चीज, मौजूद की तो ध्यान से खो गई, अब लादगी। तो लादगी जो है जगह स्थिति मिलती है, इनमें कृत्रिम स्थिति होती है, मैं ब्रह्म हूँ ये करना पड़ता है, इसको छपाना पड़ता है, स्मृति।
ये तो वस्तु है, ब्रह्म तो स्वरूप है ही, ये करने को बनाना थोड़ा ही है।
नहीं, स्वरूप है, काम नहीं आएगा, बनाने से काम आएगा, बने बनाए काम आता ही नहीं। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, पूछा क्या करें, तो उसने चिकित्सक ने कहा इसको काली मिर्च लाओ और पाव भर लिया, उसे दो स्टांग काली मिर्च दे दो और पाव भर घी दे दो, ऐसा दे दो गाय ठीक हो जाएगी। तो वो ले गया जाकर काली मिर्च लेकर उसको दे दी, गाय ठीक नहीं हुई। तो कैसा, गाय ठीक नहीं हुई, क्या बात है, तुमने ठीक कर दिया, घास ठीक कर दिया हमने, काली मिर्च दे दी, और गाय में घी तो है ही, इसमें देने की जरूरत है, गाय जो हमारे पाव घी आता रोजाना, इसमें दूध देने गाय है हमारी, तो घी तो उसमें है ही, काली मिर्च ठीक नहीं हुई कि अब उसी काम नहीं करो, है काम नहीं आएगा, वो वही काट कर देव तो काम आएगा। ऐसे ब्रह्म सर्वम है ही, अस ब्रह्म असत अब असत अभिकारी, सकल जीव दीन दुखारी, सब में परमात्मा के व्यापक रहते हुए सबके सभी दुखी, कोई भांग पड़ गई कोई सुखी नहीं हुआ, ब्राह्मण व्यापक ब्रह्म सब में है, हो जाए तो क्या काम आया होना, गाय तो गाय के घी है ही पेट में, सही में है, ऐसा काम नहीं आया वो।
विशेष करियो महाराज जी, ये तो सामान्य है, वृत्ति में विशेष जागृति करिए,
तो वृत्ति में विशेष होगी, वृत्ति से अतीत नहीं होगा, वृत्ति से वृत्ति अतीत कैसे होगा, वृत्ति से खूब खूब मेरी बात को सोचो कि वृत्ति लगाने से, वृत्ति लगाने से वृत्ति से अतीत कैसे हो जाएगा, वृत्ति तो साथ में रहेगी,
जैसे तूली से आग पार पर कहते तूली काटने बाद बुझ जाती है,
बातों युक्ति नहीं है, करके देखो, युक्ति नहीं चलेगी, करके देखो, खूब खूब आप तर्क करो कि ज्ञान वो जो वृत्ति है, जो मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति नष्ट होकर ब्रह्म रह जाएगा, ये बात ठीक अनुभव में आती है क्या, वृत्ति को सहायक मानते हैं, मैं ब्रह्म हूँ इसमें वृत्ति सहायक है, वृत्ति नष्ट हो जाए ये बात नहीं है, दिया समय में तो सिलाई नष्ट हो जाती है, इसमें मैं ब्रह्म हूँ इसमें वृत्ति नष्ट हो जाती है, आप अनुभव कर देखो फिर बताओ।
महाराज जी, अब जैसे बुद्धि में है ना, बुद्धि में है जो ये कोई संदेह नहीं है कि भाई हम शरीर कैसे हो सकते हैं, फिर भी क्या है कि ये मतलब निरंतर जागृति शरीर नहीं हुई।
अरे भाई जागृति मैंने बात कह दिया ना, मैं शरीर हूँ, ये पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, समझ स्थावर है, जंगम है, उन सब में अहम रहता है, अनादिकाल से अहंग का शरीर के साथ संबंध है, और तत्व देखा जाए तो अहंग है, ये वृत्ति है, प्रकृति की है, ये प्रकृति से अतीत वृत्ति नहीं है, प्रकृति की है। अब प्रकृति को पकड़ करके उस प्रकृति से अतीत होना चाहिए, कैसे हो जाएगा? प्रकृति के द्वारा प्रकृति से अतीत कैसे हो जाओगे? बताओ, आप बताओ, दलील दो। प्रकृति के द्वारा प्रकृति से अतीत नहीं हो सकते। प्रकृति का अंश भी त्याग करोगे तो होगा। उजैसी जन ठीक बात है, वही होगा। अब चल आप देख रही है, आप बताओ उजैसी कैसे? वृत्ति के द्वारा वृत्ति का नाश कैसे हो जाएगा? जड़ के द्वारा जड़ का नाश कैसे हो जाएगा?
चेतन भी है, वृत्ति भी है,
दोनों है।
हाँ, तो चेतन का बोध होते ही वृत्ति का त्याग नहीं होगा?
बोध कैसे होगा? वृत्ति के द्वारा बोध कैसे होगा?
वृत्ति साथ में
है ना?
छूट जाए
बड़ी अच्छी बात। मैं रखना नहीं चाहता, मेरी मेरा उद्देश्य नहीं है कि वृत्ति रहे, पर तू वृत्ति के द्वारा वृत्ति छूटेगी कैसे है? इसका समाधान करो।
मैं
नहीं रहेगा तो ब्रह्म ही रहेगा, और रहेगा क्या? और क्या रहेगा बताओ?
मैं तो जानकारी के वास्ते, समझ के वास्ते, वास्ते में वृत्ति को अनुभव में आते ही वृत्ति छूट जाएगी, मैं ही छूट जाएगी।
ये बात ये सीखने में तो अच्छी लगे है, पर अनुभव सीखने में तो आप बात अच्छी लगती है, मैं अनुभव करके देखो मैं कैसे दूर हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म में मैं का आरोप हुआ है, ब्रह्म का त्याग नहीं हुआ, मैं का त्याग नहीं हुआ है। मैं ब्रह्म हूँ, इसमें मैं के साथ ब्रह्म है। मैं छूट कर ब्रह्म कैसे हुआ? ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं छूट जाएगी, ठीक बात है। मैं पहले मैं छूटेगा, पहले ब्रह्म ज्ञान होगा आपकी दृष्टि से, पहले ब्रह्म ज्ञान होगा फिर मैं छूटेगी। मैं कहता हूँ पहले मैं छूटेगा फिर ब्रह्म ज्ञान होगा। ये मतभेद है आपके, हमारे मेरे को साफ दिख है, आप देखो विचार करो।
जब तो उपलक्षण पर वृत्ति रहेगी फिर उपलक्षण कैसे?
हाँ, उपलक्षण पर वृत्ति, उपलक्ष्य कैसे मिलेगा? लक्ष्य में वृत्ति केवल लक्ष्य कैसे रहेगा? जब वृत्ति की सहायता रहते है तो वृत्ति का आदर निरादर कैसे होगा? निरादर होने पर उससे ऊपर कैसे उठोगे?
जैसे उपलक्षण है, उपलक्ष्य को ज्ञान होते ही निर्थक हो जाता है।
मन ज्ञान होगा कैसे वृत्ति के रहते हुए, ये बताओ, फिर हम मान लेंगे आपकी बात। और हो जाए तो हम तो ठीक कहते हैं, हम खंडन नहीं करते हैं। एक सुगम और कठिनता की बात बताता हूँ मैं, हाँ मैं खंडन नहीं करता हूँ, खंडन करने में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है जल्दी कैसे प्राप्ति हो, ये मेरी धुन है।
हाँ,
जड़ का त्याग होगा ही, ब्रह्म ज्ञान करोगे तो जड़ का त्याग होगा, जड़ त्याग करोगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा। मैं त्याग पहले करो तो सुगमता से हो जाएगा, जड़ को साथ में रखो तो कठिनता से होगा, जल्दी नहीं होगा। अर्जुन जैसी दो बात बताई, बुद्धि तेज हो, वैराग्य तेज हो तो वो काम जाएगी। बहन तेरे कैसे छूट जाएगी वृत्ति? शंका करो, और खूब करो,
शंका हल होगी।
बहुत अच्छी बात है। तो जागृति कब रहती है? कि जब निषेध पक्ष को देखो, अंत में निषेध ही सिद्ध होगा। विधि से भी आप करोगे तो वृत्ति छूट जाएगी, ये कहना पड़ेगा आपको। हम कहें वृत्ति छोड़ दो पहले ही, छूट जाएगी क्यों? पहले छोड़ दी अपनी वृत्ति, वृत्ति का अधीन नहीं है, वृत्ति का आश्रय नहीं लिया। अगर वृत्ति का आश्रय लोगे साधन में तो वृत्ति छोड़ कैसे दोगे? आश्रय ही वृत्ति का है, जिसका आश्रय लिया वो छोड़ा कैसे जाएगा? जिसको सहायक माने वो कैसे छूट जाएगा? उसकी बाधा कैसे होगी? आधार रहेगी, वो सहायता करने वाली चीज है हमारी। सहायक का कैसे त्याग करेंगे? उसकी उपेक्षा कैसे होगी? त्याग अंत में त्यागा शांति, गीता ने कहा त्यागा शांति, त्याग के बाद शांति है। अरे टट्टी पेशाब भी त्याग दे तो शांति मिलती है। मैली से मैली चीज भी छूट जाती है साहब तो ठीक हो जाए, पेट साफ हो जाता है। त्याग से जो मिलती है शांति वो ग्रहण से नहीं मिलती, विधि से वो नहीं मिलती, जो निषेध से मिलती है। इस बात से अतः त्यजंत मृगयंति संत, अतः त्यजंत मृगयंति संत, संत लोग उसका खोज कैसे कर, अतः त्यजंत छोड़ते छोड़ते उसका अनुभव करते हैं।
दो जगह
भागवत में, भागवत में तो हुआ रही है अगर त्रिजंत त्रिजंत मृगंति शांत त्यागात शांति धर्म। त्याग के बाद रहेगा क्या? रहने में त्याग नहीं होगा, रहने में तो रहने का विधान करेंगे तो उसमें वृत्ति साथ रहेगी। ये जो बात है किस उद्देश्य से है, एक मार्मिक बात बताऊं। मैंने जो विचार किया है, पुस्तकें पढ़ी है, संतों से सुना है, प्रश्नोत्तर किया है, वो किया है, उसमें फिर अहम ब्रह्मास्मि को विशेष दर्जा क्यों दिया है, क्या विश्वास दिया है, इसमें द्वैत का खंडन करने का तात्पर्य है, ब्रह्म की प्राप्ति का तात्पर्य तो सिद्ध हो जाएगा, पर द्वैत खंडन करना है। अगर खंडन द्वैत का करना है तो द्वैत कैसे होगी? अहम ब्रह्मास्मि होने से जीव और ब्रह्म की एकता हो जाएगी, और अहम साथ में नहीं लोगे ब्रह्म की, जीव की ब्रह्म की एकता नहीं होगी। इस वास्ते अहम ब्रह्मास्मि शेष माना है, उनके आशय समझना से किस आशय दिया है। ऐसा नहीं कि वो कहने वाले अनजान थे, ऐसा बताने वाला अनजान से ही बात नहीं है, ये मेरी बात धारणा नहीं है, वो जानते नहीं थे। जानते हुए क्यों किया? उनका सिद्धांत अद्वैत को सिद्ध करना था, वो अद्वैत सिद्धांत करने के लिए ये दिया अहम ब्रह्मास्मि, द्वैत का खंडन करने के लिए, अहम को रखने के लिए नहीं किया है।
अद्वैत को खंडन करने का है।
हाँ जी,
मुख्य प्रधान।
हाँ,
अद्वैत
सिद्ध है, सो सही। उसके लिए ये आचार्य ने कहा है।
एक बात सुन लेनी, अहम को क्या बताया उन्होंने?
अहम को जीव बताया, अहम तो जीव हुआ और ब्रह्मास्मि ब्रह्म हुआ, तो जीव ब्रह्म की एकता अहम ब्रह्मास्मि से होगी। इसे कैसे होगी? जीव अहम है, वास्तव में जीव अहम है नहीं, अहम प्रकृति है। मेरे विचार हुआ ऐसा, मैं किसी बात को कहता हूँ तो ये नहीं कि उनके अनजान पने में और खंडन में मेरा तात्पर्य नहीं है, खंडन में करता नहीं हूँ। आप सोचे हो सदैव खंडन में मेरी मुख्य बात नहीं रही है, मुख्य बात उस तत्व को समझने की है, वो कैसे सुगमता से समझा जाए। तो निषेध मुख से, अस्वीकृति मुख से जड़ का संबंध विच्छेद सुगमता से हो जाता है, और आम के साथ में जड़ता के रखने का अभ्यास है। अब उसको लक्ष्यार्थ एक है तो सीख लोगे लक्ष्यार्थ। रामायण का हमारे क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रथ अधम शरीरा, तो पंच रथ ये है, सोतनु तब यह आगे सोगा, जीव नित्य तुम कही लगो होगा, उपजा ज्ञान चरण सब लागी। तो वाच्यार्थ की एकता की है, लक्ष्यार्थ की एकता नहीं की है। आपको जो ठीक है, आपको जो ठीक है बर्फ नहीं है पानी ही है, तो बर्फ को निषेध करना पड़ेगा। दो तरह के साधक होते हैं। अब देखो एक बात कहता हूँ, न्यारी बात। साधक दो तरह के होते हैं, एक साधक है बड़े तेजी वैराग्यशील है, बुद्धि तीक्ष्ण है, वैराग्य है, एक ऐसा साधक है। एक साधक है इतना तेजी या वैराग्य नहीं रहती, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, एक ऐसा साधक है। दोनों में जैसे रस्सी में सांप दिखता है, ध्यान दे सुनना पास, रस्सी में सांप दिख रहा है, परंतु जो भयभीत हो रहा है सांप से, एक निर्भय निस्संग है, सांप है पढ़ा है कि हमारे कुछ नहीं मतलब बिगड़ सकता, ऐसा निर्भय अंतकरण है। निर्भय अंतकरण वाले को तो कह दिया जाए कि रस्सी है तो कोई हर्ज नहीं, पर भय भयभीत कह दे रस्सी नहीं सांप नहीं है तो क्या है कि रस्सी है, दो बात करनी पड़ेगी उसको, जिसको भय होता है सर्प से उसको दो बात करनी पड़ेगी, सांप नहीं है पहले भय दूर करो फिर रस्सी दिखेगी, भय ही नहीं रस्सी कह दो। ऐसे यदि बुद्धि तीक्ष्ण है और वैराग्य तेजी का, संसार के राग है ही नहीं जिसमें, किसी तरह में राग होता ही नहीं, उसको कहते ब्रह्म है ठीक आ जाएगी, समझ आ जाएगी। और नहीं तो संसार नहीं है ब्रह्म है, ये दो बात करनी पड़ेगी उसको। तो जिसके बुद्धि भी तीक्ष्ण नहीं है, वैराग्य तेजी का नहीं है, उसके लिए कहते ब्रह्म है, उसमें भी तू ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं, ब्रह्म है बस और है ही नहीं, सबका निषेध करना पड़ेगा, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो गीता ने ब्रह्म ही है ये नहीं है, वासुदेव सर्वम, इसको सर्व से ऊंचा दर्जा दिया गीता ने। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचित न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, भक्तिया माम अभी जानाती आवानी अस्त्राशी तत्व थे तत्वमान तत्व अभिष्टे। बात आई है तो वासुदेव सर्व सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे बर्फ है तो बर्फ है ही नहीं, है ही जल, केवल जल तत्व को देखो। शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि सत्य भी भेदापगमे नाथ तवाहंग न मामकी न स्तम सामुद्रो ही तरंग कुसन समुद्रो न तारंग। तरंग का समुद्र नहीं है, समुद्र की तरंग है ये कहा है। और उन्होंने कहा अब्धि अपार स्वरूप मम विष्णु लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश ये सब लहरा है, अपार मेरा समुद्र है। शंकराचार्य ने नहीं कहा है, शंकराचार्य ने कहा कि महाराज सत्य भी भेद आपके में भेद नहीं है आप में हमारे में, तो भी सामुद्रो ही तरंग, तरंग समुद्र का है, तरंग का समुद्र नहीं है।
आपका मैं हूँ, मेरे
मैं आप नहीं हो, मेरा स्वरूप मेरी तरंग आप नहीं हो, आपकी तरंग मैं हूँ। वास्तव में न तरंग है न समुद्र है, जड़ है ये चीज है असली। समुद्र का जड़ है, समुद्र की तरंग है, तरंग का समुद्र है। ये तरंग और समुद्र दोनों को सिद्ध करता है, न समुद्र है न तरंग है, जड़ है, ये ठीक बात है। ये सिद्ध हो जाएगी, न समुद्र सिद्ध होगा न तरंग सिद्ध होगा। तो तत्व जैसे समझ गया हो तो इस तरीके से जल्दी समझ आएगा, ठीक है। मैं नारायण 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 जागृति समझ में आने से
दो प्रकार का मान्य निषेध बलवान मान्य
है,
एक तो विदय विशेषण एक निषेध विशेषण।
हाँ
निषेध विशेषण बलवान मान्य है,
बोलो बोलो मेरी बड़ी बात होगी। नहीं भाई हमारे तो जैसे समझ में आई है वैसे कहते हैं, जैसे ठीक समझा वैसे कहता। हमारे आग्रह नहीं है, आग्रह रखने से बोध नहीं होता, आग्रह छोड़कर बात करो विचार करो उसमें बोध असली होगा। ना द्वेष का ना द्वेष का, ना भक्ति का ना ज्ञान का ना कर्म का, किसी का ही कोई आग्रह मत करो, पकड़ो तो उस आग्रह में रहोगे, आग्रह नहीं छोड़ोगे। ये बात है।